मलिका तारा परी को अपने वश में करके उस होटल में ले गई जहां उसका मालिक मौजूद था। तारा परी ये जानना चाहती थी कि आखिर कौन है इस मलिका का मालिक, आखिर किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही है। तारा परी जैसे ही होटल गई और वहां उसने उन काली शक्तियों के मालिक का असली चेहरा देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि काली शक्तियों का मालिक कोई और नहीं बल्कि अमित था, जो अमन का बचपन से दोस्त था। और इतना ही नहीं, वो अमन की ही कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करता था। तारा परी उसे देखकर कुछ ज्यादा ही शौक हो चुकी थी। तभी अमन को अपने फोन पर किसी का SMS मिला और उसे बताया गया कि उसकी होने वाली पत्नी एक होटल में किसी और के साथ है। ये पढ़ते ही अमन का पारा हाई हो गया, क्योंकि अमन सोच रहा था कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है, क्योंकि तारा तो उसके सामने बेहोश पड़ी हुई थी। वो SMS उसने अपने भाई मान को भी दिखा दिया। करिश्मा जी को कुछ भी पता नहीं चल पाया था, क्योंकि वो तो तारा को उठाने में बिजी थी। तब अमन ने मान से कहा, तो एक काम कर, तारा को होश में लाने की कोशिश कर। मैं अभी जाकर इस मैसेज का झूठ और सच पता करता हूँ और ये पता लगाता हूँ कि अमन सिंह राठौर से इतना घटिया मजाक करने की आखिर किस में हिम्मत आन पड़ी है। तब मान ने हाँ में सर हिलाया और अपने भाई को जाने के लिए कह दिया। अमन जैसे ही अपने बंगले से बाहर निकला तो उसके सभी गार्ड बाहर ही खड़े हुए थे। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका बॉस कहीं जाने वाला है, वे लोग भी तुरंत अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर अमन के साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अमन ने उन्हें रोक दिया और बोला, तुम लोगों को मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रुको, मेरा एक पर्सनल छोटा सा काम है, मैं वो निपटा कर आता हूँ। अमन की बात सुनकर साले गार्ड गाड़ी से उतर गए, लेकिन एक गार्ड ऐसा था जो अमन के पीछे जाना चाहता था, क्योंकि जब से तारा परी ने उसे चांटा मारा था वो बदले की आग में चल रहा था। और जब से उसे ये पता चला था कि तारा परी की शादी उसके बॉस से होने वाली थी तो वो और ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अगर तारा की शादी उसके बॉस से हो जाती है तो फिर कभी भी अपना बदला वो उससे नहीं ले पाएगा। वो अपने बदले की आग में चूर था। बार बार उसे यही बात खाई जा रही थी कि भला एक मामूली सी औरत कैसे उसे उसके साथियों के सामने चाटा मार सकती थी। इसलिए वो बस एक ऐसे मौके की तलाश में था कि तारा को वो नीचा दिखा सके। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित मलिका के जाने के बाद कमरे की कुंडी लगाकर तारा के पास जाकर बैठ गया था और उसे पागलों की तरह देखने लगा था। वो उसे छू नहीं रहा था, केवल उसके जिस्म के हर हिस्से को छूने की कोशिश कर रहा था। हल्की सी ऊपर से तारा परी की टांगों से अपना हाथ ले जाते हुए वो उसके चेहरे तक ले आया था और तारा को अपने इतने करीब देखकर बेहद खुश हो रहा था। उसके मन में गुदगुदी सी मची हुई थी। वो तारा परी के चमकते हुए जिस्म को देखकर पागल हुए जा रहा था और अब उसके एकदम गुलाबी होठों को देखकर उसका सब्र का बांध टूट चुका था और वो अपने होंठ धीरे धीरे उसके होठों पर ले जाने लगा था। और अभी वो अपने होंठ उसके होठों पर रखने ही वाला था कि हल्का सा उसके लिप्स को छूते ही तारा परी फूलों के ढेर में बदल गई और उस बेड पर जहां तारा परी थी सिर्फ और सिर्फ फूलों का ढेर था। अमन ये देखते ही पागल सा हो गया था और वो बुरी तरह से फूलों के बीच तारा को ढूंढने लगा था, लेकिन वहां फूलों के ढेर के अलावा किसी और चीज का नामोनिशान नहीं था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। अमित को अभी भी उम्मीद थी कि जरूर तारा आई होगी और वो दरवाजा खोलने के लिए फूलों के ढेर को बेड से नीचे फेंकता हुआ उठ खड़ा हुआ था। वहीं दूसरी ओर तारा परी की रूह वापस उसके जिस्म में आ गई थी और उसे होश आ गया था। हुआ ये था कि जिस वक्त तारा परी को लेने के लिए मलिका उसके पास आई थी तब तारा परी ने वॉशरूम जाने का बहाना किया था और वॉशरूम में जाकर उसने छोटी जलपरी को आदेश दिया था कि वो उसके हूबहू उसकी शक्ल का एक जिस्म तैयार करे और उसके अंदर मेरी रूह डाल दे और कुछ ऐसा करे कि जैसे ही इस जिस्म के किसी भी हिस्से को कोई छुए उसी वक्त इसे फूलों के ढेर में बदल देना और मेरी रूह वापस मेरे जिस्म में डाल देना। उस छोटी जलपरी ने बिल्कुल वैसा ही किया और तारा परी की फोटोकॉपी जैसा एक शरीर तैयार कर दिया था, जिसे देखकर तारा परी भी हैरान हो गई थी। फिर उस जलपरी ने तारा परी की रूह निकालकर उस जिस्म में डाल दी थी और तारा परी वहीं उसी बाथरूम में बेहोश हो चुकी थी। सो अब जैसे ही अमन ने उसे छूने की कोशिश की और जैसे ही उसके होंठ उस फोटोकॉपी के होठों को हल्का सा छुए, ठीक उसी वक्त वो गायब होकर फूलों का ढेर बन चुकी थी और तारा परी की रूह अपने जिस्म में वापस लौट आई थी। तारा परी को होश में आया देख मान और करिश्मा जी एकदम खुश हो गए थे और तभी करिश्मा जी ने तारा परी को बेड के सिरे पर बैठाया और उसे पानी पिलाने लगी थी। मान भी खुद को रोक नहीं पाया और वो तारा का हाथ पकड़कर हल्के हल्के हाथों से उसे मालिश देने लगा था और जल्दी ही तारा परी स्थिर नजर आने लगी थी। तब करिश्मा जी ने तारा परी से पूछा, बेटा क्या हो गया था आपको, आप बाथरूम में कैसे गिर गई थी। तब तारा परी को बार बार अमित का घिनौना चेहरा याद आ रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो काली शक्तियों का मालिक कोई और नहीं बल्कि अमित था। अब तारा परी को अमित का सारा बर्ताव याद आने लगा था जो वो ऑफिस में उसके साथ किया करता था और क्यों हर लड़की को वो ये कहता फिरता था कि अमन औरतों से नफरत करता था। एक यही कारण था कि कोई लड़की उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। वेल, करिश्मा जी तारापरी को सोच में गुम देखकर एक बार फिर बोल पड़ी थी और बोली, क्या हुआ था तारा बेटा, आखिर तुम्हें हुआ क्या था बेटा, क्या तुम डर गई थी? लेकिन तारापरी कुछ भी नहीं बोल पाई, वो ऐसे ही गुमसुम सी बैठी रही। वहीं दूसरी ओर अमित ने जैसे ही उस होटल के कमरे का दरवाजा खोला, वो हैरान रह गया था क्योंकि उसके सामने अमन खड़ा हुआ था। अमन को दरवाजे पर देखकर वो सकपका सा गया था और वो खाली खाली नजरों से उसे देखने लगा था। तभी अमन ने कमरे के अंदर झांका और चारों ओर फूल ही फूल देखकर वो हैरान रह गया और बोला, अमित तू यहाँ क्या कर रहा है और तेरे साथ कौन है यहाँ? तब अमित बोला, मेरे साथ कौन होगा, मैं तो अकेला हूँ यहाँ पर। तब अमन बोला, लेकिन तू अकेला भी यहाँ पर क्या कर रहा है और इस कमरे को तूने इतना क्यों सजा रखा है? सच बता, तू किसके साथ आया है यहाँ पर? तब अमित कुछ बहाना बनाने ही वाला था कि तभी अमन का फोन बज उठा। मान ने अमन को फोन करके बता दिया था कि तारा को होश आ गया है। ये सुनकर अमन एकदम खुश हो गया था और वो अमित से बोला था, मुझे नहीं पता था अमित तू मेरे साथ इतना खटिया मजाक करेगा, वो भी आज के दिन। तू मेरा बचपन का दोस्त है इसलिए मैं तुझे जान बख्श रहा हूँ, वरना अगर आज तेरी जगह कोई और होता तो मैं उसकी जान ले लेता, समझा तू? अमन अमित को धमकी देते हुए जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया था और अमित अपना सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठा हुआ उन फूलों के ढेर को देखने लगा था। अमन जल्दी से अपने घर पहुंच चुका था और तारापरी को इस तरह से उदास और गुमसुम बैठा देखकर वो भी दुखी हो गया था और वे दोनों भाई उसके बिल्कुल करीब बैठे हुए थे। तभी अमन ने एक और कोशिश की और तारापरी के चेहरे को ऊपर करते हुए बोला था, मिस तारा हुआ क्या था आपको?
तब तारापरी खुद को संभालती हुई बोली थी, वो मैं बस सगाई के लिए कपड़े बदलने वॉशरूम गई थी और अचानक मेरा सर भारी होने लगा था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। अब जब होश आया तब मैंने अपने आप को यहाँ करिश्मा मैम के साथ पाया था। तब करिश्मा जी तड़प कर तारा के पास गई और उसे गले से लगाती हुई बोली, बस बस करो अब तुम दोनों, अब मेरी बेटी को कोई तंग नहीं करेगा। एक तो कल रात भी हमने इसे आधी रात को उठा दिया था जिससे इसकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी और अब सुबह से सगाई की तैयारी से ये घबरा गई होगी और शायद इसीलिए इसे चक्कर आ गए होंगे। अब तुम दोनों बाहर जाओ, मैं इसे तैयार करके ले आती हूँ। अमन और मान दोनों तारा को एक एक नज़र प्यार से देखते हुए बाहर निकल गए थे। करिश्मा जी ने एक बार फिर अपनी तसल्ली करने के लिए तारापरी से पूछा था कि क्या तुम वाकई इस रिश्ते के लिए तैयार हो, तैयार हो मेरे दोनों बेटों से शादी करने के लिए? तब तारापरी बोली, हाँ माँ, मैं अपने पूरे होशो हवास में आपके दोनों बेटों के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, आप रुकिए मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ऐसा कहकर तारापरी वो खूबसूरत ड्रेस लेकर बदलने के लिए चली गई थी और मन ही मन सोचने लगी थी कि हे काली शक्तियों के मालिक, आप देख तारापरी तेरा क्या हाल करती है। वहीं दूसरी ओर अपनी नाकामी पर अमन का पारा हाई हो चुका था, वो गुस्से से लाल पीला होकर अपने असली रूप में आ गया था। उसके चेहरे पर अब इंसानी चेहरा नहीं था, वहां कुछ था तो वो एकदम काला धुआं था। उसने गुस्से से पूरा कमरा तहस महस कर दिया था और वो वहां से निकल गया और अपने महल में पहुंचकर उसने उस काले साई को याद किया जो मलिका के शरीर में था।